أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس ہستی کے ساتھ ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جن کے نام کے ساتھ ہی احترام کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، جن کا مقصد اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا اور زندگی سنت رسول پر چلانا ہے. جی ہاں، آج ہم استاذہ عفت مقبول صاحبہ سے بات کریں گے، جنہوں نے 15 سال پہلے نور القرآن کی بنیاد رکھ کر اس دین کی خدمت کرنے کا بیڑا اٹھایا. استاذہ عفت مقبول صاحبہ نے پنجاب یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کیا، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر ایجپٹ کا سفر اختیار کیا. حدیث و تفسیر میں خاص مہارت حاصل ہے، عربی زبان اور گرامر میں عبور حاصل ہے. سادہ اور جامعہ الفاظ سے قرآن کی تفسیر کرنا ان کا خاصہ ہے. ہر عمر کی خواتین قرآن سے اس طرح جوڑتی ہیں کہ وہ قرآن کو عملی زندگی میں لے آئیں. استاذہ کی سوچ ہے کہ دلوں کو قرآن سے روشن کریں اور انسانیت سے پیار کو اجاگر کریں. وہ زیادہ تر گھریلو اور خاندانی زندگی اور میرا گھر میری جنت اور عورتوں کی ذمہ داریوں پر بیان دیتی ہیں، اور میں خود جو ہے ان کے لیکچر 3 سال سے تقریباً سن رہی ہوں، اور آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے لیے کوئی موتی سمیٹ سکیں. تو میں وقت ضائع کیے بغیر انشاءاللہ استاذہ سے کچھ سوال کروں گی اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی جانیں گے کہ وہ قرآن کے بارے میں کس طرح انہوں نے کام شروع کیا. تو استاذہ، میرا سب سے پہلے آپ سے کوئسچن ہوگا کہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیوں ہم اس کی طرف اتنا توجہ دیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور ہم دعا کریں گے کہ ہماری آج کی اس بات چیت سے بہت سارے لوگوں کو اللہ کی کتاب تک پہنچنے میں مدد ملے. تو آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے کہ قرآن پاک کیوں پڑھیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم کھانا کیوں کھائیں، ہم سوئیں کیوں، ہماری ضروریات ہے نا. جس طرح ہمارے جسمانی تقاضے ہیں، بھوک لگتی ہے تو کھانا پڑتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پینا پڑتا ہے، نیند آتی ہے تو سونا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے کچھ روحانی تقاضے بھی ہیں. تو ہماری روح کی غذا قرآن ہے، اس لیے قرآن پڑھیں، اور اس لیے بھی پڑھیں کہ ہمیں ہمارے رب کی مرضی پتہ چلے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈرائیونگ کرنے کے شوقین کو گاڑی چلانے سے پہلے وہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، جس کے بعد وہ حادثات سے بچتے ہوئے گاڑی چلا سکتا ہے. ہم قرآن پاک پڑھے بغیر یا سمجھے بغیر، آپ یہ کہہ لیجئے، جب زندگی کی روڈ پہ جاتے ہیں تو بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، جس کی آج ہمارے فیملی سیٹ اپ میں بگاڑ کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو قرآن پاک پڑھنے کے 1001 فوائد ہیں، لیکن ایک ہی بات ہے کہ قرآن جس نے نہیں پڑھا وہ دنیا کی سب سے زیادہ ایسی دولت سے محروم ہے، جس نے دنیا کے سارے ذائقے بھی لیے ہوں لیکن اس کو وہ لذت نہیں ملی ہوگی جو قرآن سے ملتی ہے. تو قرآن پڑھتے تو ہم بہت ہیں. میرا خیال ہے آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ قرآن سمجھ کر کیوں پڑھے، تو میرے جواب سارے اس سے متعلق ہیں.
بالکل جی، صحیح فرمایا آپ نے، کیونکہ روح کی غذا بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور جس طرح اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے مختلف قسم کے ہم فوڈ استعمال کرتے ہیں، اس طرح ہماری روح کی غذا کے لیے قرآن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہدایت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ قرآن اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضرور. لیکن ہم عورتیں ہیں، ہم مائیں ہیں، ہم اپنی اگلی نسل کو قرآن سے جوڑنے اور سنت سے جوڑنے کے لیے ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ قرآن سے ان کو ایک شغف، ایک اچھا لگے ان کو اپنی زندگی کو عمل میں لانا. پڑھ تو ہم رہے ہیں لیکن اس طرح کا ہمیں چیز حاصل نہیں ہو رہی جو ہمارے گھروں میں عام لائف میں ہمیں نہیں نظر آتی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا ایسا کریں؟
جی، اس کا جواب یہی ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہماری اسلاف کی ماؤں نے کیا. آپ اسلاف سے مراد اگر صحابہ کرام، اور اس کے بعد صحابیات اور ازواج مطہرات، پھر اس کے بعد آئمہ کرام، ان کی مائیں، آپ سارے لوگوں کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی باشعور مسلم گزرے ہیں اس کے پیچھے ایک ہی سوچ تھی کہ ہم نے اپنی نسلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے جوڑنا ہے تاکہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے. دور حاضر کی ماں پڑھی لکھی بھی ہے، بہت ٹیلنٹ بھی ہے، لیکن اس کے پاس اتنی مصروفیات ہیں اور اس کو بہت سارے کام دے دیے گئے، جبکہ ہمارے اسلاف یا کہہ لیجئے کہ پہلے دور کی مائیں، ہماری نانیاں دادیاں، وہ بہت پڑھی لکھی نہیں تھیں، ان کو کمپیوٹرز بھی نہیں چلانے آتے تھے، ڈرائیونگ بھی نہیں آتی تھی، لیکن سیدھی سادی خواتین فطرت کے اتنے قریب تھیں کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہماری اصل ذمہ داری بچوں کی تربیت ہے. तो बच्चों की तरबियत के लिए माँ की तरबियत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इसमें यह है कि मर्दों को और औरतों को जब रिश्ते जुड़ते हैं उस वक्त दीन को बुनियाद बनाना है। हम अपने बेटों के लिए रिश्ते ढूंढें तो दीनदार लड़कियाँ, और इसी तरह से बेटियों के लिए दीनदार मर्द हों। और फिर शर्त यह कि आपने ख़ुद भी अपने बेटे और बेटी की तरबियत दीन पे की हो। तो ये तो एक पूरा यू टर्न है जो लेना पड़ेगा। फ़िलहाल तो हम आइडियल दौर से नहीं गुजर रहे। इस दौर में मैं यही कहूँगी आपकी इस बात के जवाब में कि अपनी नस्लों को कुरान सुन्नत से जोड़ने के लिए माँ बाप को ख़ुद कुरान सुन्नत से जुड़ना पड़ेगा।
सही कहा कि कुरान और सुन्नत से माँ बाप को जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो कमी है, आज का बच्चा बहुत तेज़ है, आज का बच्चा बहुत तेज़ सोचता है, बहुत तेज़ी से कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, वो जो हमारी नस्ल पहली ने बहुत मेहनतों के बाद हासिल किया है। इसलिए माँओं को भी उतना ही तेज़ दौड़ना पड़ेगा जितना बच्चा यहाँ पैदा होते ही चीज़ों की डिमांड करता है। तो अब यह है कि एक औरत होते हुए हम दीन इस्लाम की खिदमत के लिए और कैसी ऐसी चीज़ें हासिल करें जिससे हमें खुद कॉन्फिडेंस और हमें खुद, देखें यहाँ का माशरा है, मिक्स माशरा है, इस माशरे की औरत को हमें किस तरह की सोसाइटी के अंदर किस तरह मूव करना चाहिए। फितने भी बहुत हैं इस माशरे के अंदर, फितने तो हर जगह हैं, लेकिन हर जगह के कुछ ना कुछ डिफरेंट भी फितने हैं। तो यहाँ को देख के आप क्या ऐसी हमारे लिए कहेंगी कि जिससे हम यहाँ पर और जुड़ के और अच्छी तरह एक सोसाइटी बन के हम काम करें?
जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि फितने हमेशा ही होते हैं, लेकिन आजकल के फितने कुछ नए फितने हैं, कुछ मॉडर्न तर्ज के फितने हैं। तो इन सब का इलाज वही है जो अल्लाह के नबी सल्लम ने अपनी अहादीस में हमें बताया। आप अगर चाहें तो सही बुखारी और बाकी किताबों में से किताबुल फितन पढ़ लीजिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान का दीन ख़तरे में होगा। सुबह को एक शख्स मुसलमान होगा तो शाम को कुफर पे होगा, और शाम को कुफर पे होगा तो सुबह मुस्लिम होगा, और लोग हकीर दुनिया की खातिर आखरत बेच देंगे। अब ये जुमला सुनकर आज मैं और आप अपने हालात को देखें, छोटी छोटी बातों पे हम दीन को पीछे डाल देते हैं। तो सहाबा इकराम इस तरह की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाते थे। तो उन्होंने पूछा, अल्लाह के नबी, फिर इन फितनों में हमारे लिए राह निजात क्या है? तो आपने फरमाया कि कुरान और सुन्नत। यानी अल्लाह के नबी ने दुनिया से जाते हुए जो मैसेज दिया था, तरक तुफीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, तुम्हारे बीच में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम हरगिज नहीं गुमराह होगे अगर इन दोनों को पकड़े रहोगे। किताबुल्लाह ही व सुन्नति रसूली ही, अल्लाह की किताब और रसूल सुन्नत की। तो आज बेस्ट तरीका यही है, घरों का माहौल बदला जाए। छोटे से बच्चे का घर में आना भी इस बात की दलील है कि अब आपको एक ज़िम्मेदार माँ बाप बनना है। ख़ुद भी दीन की तरफ जाएंगे, बच्चों को भी लेंगे, और इससे पहले कि बच्चा बालिग हो उसको ज़हनी तौर पे इतना ज़्यादा अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास दिलाएं कि फिर वो दुनिया में कहीं भी अगर हादसाती तौर पे भी भेज दिया गया हज़रत यूसुफ़ की तरह, तो अल्लाह ताला उनको भटकने से बचाएगा। हज़रत यूसुफ़ भी तो एक फितने का शिकार हुए ना, एक औरत ने ख़ुद उनको गुनाह की दावत दी, लेकिन अल्लाह ने बचा दिया, ना माँ पास थी ना बाप था। वजह क्या कि आप अपने बच्चों को उनकी बलूगत की उम्र तक इतना अल्लाह कॉन्शियस कर दें और उनके अंदर ईमान और अल्लाह की मोहब्बत डाल दें, तीन ही बातें, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और आखरत की फिक्र, बस, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करेगा।
अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान का जुमा लिया है कि हिफाजत खुद करनी है अल्लाह ने, और इसी तरह वो इंसान जो कुरान से जुड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली उस हिफाजत उस हसार में आ जाता है। इसको तो हम एक तरफ रखते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हम मुसलमान ख़ुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं दीन के अंदर, हम खुद कुछ फंक्शन हों, कोई भी हमारे आम शादी के हों, हमारी आम रस्म व रवाज हो, उसके अंदर जो हम एक डगर पे चल पड़े हैं उसके अंदर हमारी वापसी कैसे हो सकती है? जिस तरह शरीयत का एक असूल है, कहते हैं कि मुसलमान एक बंधे हुए ऊँट की तरह है, वो रस्सी से वहाँ तक नहीं जा सकता, हदूद क्रॉस नहीं कर सकता है। तो आजकल हम अपने रस्म व रवाज में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम अपने बच्चों को भी ये सबक देना मुश्किल हो गया कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, चाहे वो हमारी मरने के हों। आप इसमें बताएं कि हम अपने रस्म व रवाज को कैसे कंट्रोल करें कि हम अपनी नस्लों को जो है एक इस्लाम की सही जो अकासी या सही शक्ल को दिखा सकें, क्योंकि हर साल बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें जो हैं बदलती हैं और वो चीज़ें एक नई शक्ल के अंदर हमारी अगली नस्ल को अफेक्ट कर रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
जी, आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा कारनामा है ना, अपने पूरे माशरे के रस्म व रिवाज और उनके ख़ानदान और बाप दादा के जो तौर तरीके थे उनको बदलवा दिया। आज भी ये सबसे मुश्किल है। अल्लाह के नबी के ऊपर सबसे बड़ी जो बात की जाती थी वो ये थी कि आप हमें हमारे बाप दादा के तौर तरीक़ों से या उनके दीन से हटाते हैं। आज भी जब आप सच्चा दीन पेश करते हैं, सादगी वाला दीन, साफ सुथरा, और जैसे आपने रस्म व रिवाज की बात की, तो लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि हम ये ना करें वो ना करें और हमारे प्रोग्राम्स हो जाएं। तो उसका वही तरीका है जो अल्लाह के नबी ने इख्तियार किया था, कि जब लोगों को अल्लाह की हकीकत समझ आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा समझ आ गया कि हमें अल्लाह की कितनी ज़रूरत है, अल्लाह कितनी बड़ी हस्ती हैं, हम कितने मोहताज हैं उसके, उसको नाराज़ करके मैं जाऊँगी किधर? अगर मैं अपनी खुशी में सबको खुश कर लूँ और अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए, तो क्या मुझे आगे अल्लाह से कोई काम नहीं है? और क्या पता इस नाशुक्री की वजह से अल्लाह अगले दिनों में कुछ परेशानी डाल दे, वो घर ही टूट जाए। आप देखिए जितने घर बनते हैं उससे कुछ कम ही टूट रहे हैं। तो ये सब कुछ एक अल्लाह ताला के साथ जंग है, तो हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। हम जिन कल्चर्स को देखते हैं, आप उनको भी देखिए, वो भी अभी शादी ब्याहों पे उतना नहीं लगाते जितना हम लगाते हैं। तो हमें हमेशा संजीदगी के साथ रहना है, बैठकर सोचें कि इतना कुछ लगाकर हमें क्या मिला, बल्कि घर वालों को थकन, परेशानी, और कभी एक नाराज़ कभी दूसरा। आपके घरों की खुशियाँ आप इंजॉय करें, लोग इंजॉय कर जाते हैं, आप परेशान होते हैं। तो इसके लिए हमें संजीदगी से सोचना चाहिए, और खुशियों का सच्चा मेयार हो कि जिसके ऊपर कोई पूरा उतर सके, ना कि ये कि आप एक काम कर दें तो एक खुश है तो दूसरी बात पे वो आपसे नाराज़ हो जाए।
सही कहा है कि ये जितना मर्जी किसी को खुश कर लें, हर चीज़ करने के बावजूद कुछ ना कुछ बातें बाद में, चाहे वो खुशी के मौके हों चाहे वो गमी के मौके हों, तो उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ झोल जो है कोई ना कोई सुना जाता है। तो ये अब आपने सही कहा कि हमें अपने उस ज़माने में भी जो आज का ज़माना देखें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही रस्म व रिवाज में फंसे हुए लोग थे, आज हम फंसे हुए लोग हैं। तो आपने सही कहा कि हमें सीरत और क़ुरान से जुड़ना चाहिए, तो उसकी वजह से हम इंशाल्लाह निकल सकते हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए खासकर जो कि कोई भी कौम होती है, उसकी जो नौजवान है उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उस नौजवान नस्ल को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जिसकी वजह से वो दीन को उनको खूबसूरत सा लगे, अच्छा लगे?
जी आप देखिए कि आपको शायद ये बात पता ही होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का पैगाम दिया था, तो बड़े बड़े बाप दादे जो सरदार थे वो दुश्मन हुए, लेकिन अल्लाह के नबी का साथ यूथ ने दिया। मैं अपनी यूथ को यही कहूँगी कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, सिर्फ इनको कुरान और सुन्नत का पानी देने की ज़रूरत है। तो अगर कोई यंग ये बात सुन रहा है तो अपने लिए ख़ुद सोचे, दुनिया की तालीम के लिए 15-20 साल, फिर कोई कैरियर, फिर जॉब, फिर कुछ, और दीन के लिए क्या किया, कितना सीखा? एक किताब दी अल्लाह ने, दो तीन भी नहीं दी। अगर इस एक किताब को हम शुरू से आखिर तक पढ़ लें और समझ लें और इसके वो 5 हक अदा कर दें जो अल्लाह ताला ने हमें बता दिए, तो आप देखेंगे कि हमारी यूथ में बहुत कुछ है, सिर्फ अभी इनको घड़ने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने वक्त में से एवरेज को हिसाब में रखते हुए जितना वक्त दुनिया की तालीम और करियर में लग रहा है, उतना क्या मैं तो उससे ज़्यादा कहूँगी, लेकिन एक रेशियो के साथ आप इस दीन को सीखने को भी उतना ही वक्त है।
सही कहा कि सीखने सिखाने से ही बातें बनती हैं, सीखने सिखाने से ही जिंदगियां बनती हैं। और अल्लाह का शुक्र है आजकल तो हमारे पास रिसोर्सेज भी अल्लाह ताला ने घर के अंदर भेज दिए हैं कि आप एक उंगली अपनी लगाएं, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी है कि कौन सी लाइन अख्तियार करते हैं अपनी ज़िंदगी में से। आपने सही कहा कि टाइम अगर आप ना डिवाइड कर लें कि हमने कुछ ना कुछ टाइम दे है, रेगुलरली देना है, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत पैदा करता है। आज आपका दर्स सुना जो थोड़ा सा आपने सूरह वाकिया के ऊपर और फिर जन्नत के दर्जे और फिर नेकी किस दर्जे की करें, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी कि लोग इस नेकी के अंदर भी देखें, सिर्फ नेकी को नेकी जान के ना करें, उसके भी देखें कि नेकी कौन सी आला नेकी है। ये आप मुझे ज़रा थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दें, शायद सबको फ़ायदा हो जाए।
मेरा ख्याल है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बजाय मैं वो लिंक ना दे दूँ, वो लोग खुद ही सुन लें। जी हमारी हर रिकॉर्डिंग जो होती है ये यूट्यूब पर भी मोस्टली आती है, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आती है लाइव, नूरुल कुरान टीवी, NURULQURAN TV, एक ही साथ लफ्ज़ है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जो ही खुलेगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा। शुरू में तो अनएडिटेड्स होते हैं, फिर बाद में एडिट करके भी कुछ चीज़ें आती हैं। सिर्फ फेसबुक पे भी आता है, यही स्पेलिंग, बस एक लफ्ज़ इनमें रखिए कि लफ्ज़ नूरुल कुरान जो है उसमें डबल ओ नहीं है। नूर का लफ्ज़ अमूमन हमारे यहाँ डबल ओ से लिखते हैं, जबकि हमारी वेबसाइट में NUR के साथ नूर है। और उसको अगर आप फेसबुक पे देखें तो माई नूरुल कुरान हमारा पेज है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी चीज़ें मौजूद हैं, ये तो आपका फ्यूचर का रास्ता है। इस तरह हमारे पास लाइव ब्रॉडकास्ट के तरीके हैं, मिक्सलर एक बहुत सिंपल सा मीडियम है, आप किसी भी ऐप स्टोर में या गूगल प्ले में जाकर MIXLR लिखेंगे तो आपके सामने एक रेड आइकॉन आएगा, उसको सेव कीजिए और उसमें हमारा जो ग्रुप है लिसनिंग में जाएं तो उसमें NQLIVE, बस एक दफ़ा आपको लिखना पड़ेगा NQLIVE, तो आप उसको फेवरेट्स में डाल दें, उसको सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट टाइम जब भी मिक्सलर खुलेगा आपको नोटिफिकेशन घर में आएगा इंशाल्लाह। बाकी आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही फेवरेट। इस पे एक और भी आप चाहें तो अगर गूगल पे या जाकर आप यूट्यूब पे लिखिए असहाबुल यमीन। आज से तकरीबन 1 साल पहले हमने लास्ट ईयर न्यू जर्सी से एक 2 डेज़ का सेमिनार किया था जिसका टॉपिक ये था कि असहाबुल यमीन से असाबिकून अलव्वलून तक। ये आज जो मैंने चंद जुमले बोले मीना बाजार के मौके पे, वहाँ उसमें 3 दिन बात हुई है। और समप क्या है कि हम अपनी छोटी सी कोशिश के ऊपर राज़ी क्यों हो जाएं? दुनिया में तो हम छोटे से घर पे राज़ी नहीं है, हमारा दिल करता है बड़ा हो।
बिल्कुल
बड़ा होगा तो फिर कहेंगे ज़रा और बड़ा हो, फिर अच्छे इलाके में हो। सेम थिंग आज कोई भी iPhone 3 नहीं लेगा, ख्वाहिश तो ये होगी कि 7-8 है तो 10 भी आए, 11 भी आए। तो ये जो साबुल जमीन है ना, ये बेसिक्स हैं, ये इकोनॉमी क्लास है, साबिकून अलव्वलून बिजनेस क्लास है। तो अगर हमारी कोशिश ही सिर्फ बेसिक की है तो हम कभी भी आगे नहीं जाएंगे। कोशिश पूरी कीजिए, फिर उसके बाद अगर बिलफर्ज मिस हो गया तो साबुल जमीन तो बन जाएंगे ना, लेकिन अगर हमने बिल्कुल ही बैक पे अपने आप को रखा तो फिर अल्लाह ना करे क्या, जन्नत से बाहर रह जाए।
देखें, ये छोटी छोटी बातें कितनी इंसान को रास्ता दिखाती हैं, क्योंकि मैंने भी कभी इस थॉट से नहीं सोचा था कि नेकियों के भी दर्जों करके बंदा उसके लिए दौड़ लगाए ना। तो इंशाल्लाह सुनने वालों को भी इससे अपना कोई ना कोई रास्ता मिलेगा।
सुबह ही एक छोटा सा लेक्चर था, दूसरा किसी और मस्जिद में हम लोग जो कर रहे थे, वो भी गया होगा ऑन एयर पे, तो उसका भी यही टॉपिक था फस्तबिकुल खैरात। तो वहाँ सिर्फ 20-25 मिनट बात हुई और यही टॉपिक था कि नेकियों में दौड़ कैसे लगाएं। इस टॉपिक को भी आप लिखेंगे यूट्यूब पे तो 2-3 डिफरेंट जगहों के लेक्चर्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह।
जज़ाकअल्लाह खैर, इंशाल्लाह इससे भी हम फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि हमारा ये रेडियो भी हमें इजाज़त देता है कि, और ये अल्लाह ताला की एक नेमत है जिस पे आके हम अपनी दिल की बात करते हैं। चाहत तो ये थी कि हम लाइव प्रोग्राम करते, लेकिन आपका शेड्यूल बहुत सख्त है और उनके लिए टाइम का, और हमारा टाइम भी एक फ़िक्स टाइम है रेडियो का भी। इंशाल्लाह चलें, ये भी नेमत है कि आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने ऑडियंस के लिए। तो इंशाल्लाह टाइम आपके पास थोड़ा है। एक ज़ाती सा सवाल अब आपसे करती हूँ कि आपकी फैमिली है, आप इतना सफ़र करती हैं, खुश अखलाकी से ये फ़र्ज़ सारा अदा करती हैं, ये कैसे करती है, कैसे शुरू हुआ, किस तरह आपके अंदर ये शौक़ आया, और इतना मैनेज कैसे करती हैं ताकि हम औरतों को जो थोड़ा सा काम करके या एक ही जगह जाके, ये हफ्ते में एक क्लास होती है तो उसमें भी हम नागा डाल देते हैं कि आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, तो आप ये सारा कुछ कैसे मैनेज करती हैं?
देखिए कि ये बहुत आसान है अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला बंदे के लिए वो काम आसान कर देता है जो बंदा करना चाहता है। कोई भी काम आप जब शौक से और दिल से करते हैं आप उसमें थकते नहीं हैं। थकन किस चीज़ का नाम है? बोरियत का। और बोरियत कब होती है? जब दिल नहीं लगता। तो मैं ये जो कुछ करती कराती हूँ थोड़ा बहुत, मुझे इसमें इतना मज़ा आता है और इतना सुकून मिलता है कि सफ़र की थकन भी दूर हो जाती है, होती नहीं अव्वल थकन, और जो उसके बाद साथियों का एक रिस्पॉन्स मिलता है कि हमें ये फ़ायदा हुआ, हमारा घर बच गया, हम ऐसे थे। लोग शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के हमने कुरान को सीख कर क्या पाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि आखिरत बनेगी। हम तो शुरू से यही सुनते हैं ना, कोई नेकी कर लो, कुछ आखिरत की भी फिक्र करो। हालांकि आज एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा दूं कि कुरान की तरफ आइए, शऊर से इस किताब को पढ़ें तो पहले दुनिया बनेगी। तो उसके लिए यह है कि आप रिलैक्स रहते हैं। बाकी रहेगी बात फैमिली को कैसे टैकल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का भी वही बना दीजिए गोल जो आपका अपना। फ्रिक्शन ख़त्म करें, बहनों को अपने घरों को बहुत अच्छा मैनेज करना चाहिए, शौहर को जिस हद तक अल्लाह ना नाराज़ हो उतना खुश करना चाहिए, बच्चों को इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए, मिलके चलिए। दीन का काम अकेले में नहीं चलता, हम अपने घरों में एकदम खींचातानी डालते हैं, और अगर किसी के घर के भी हालात ऐसे नहीं तो सर डाल के इस रास्ते पर शुरू कर दे, अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाल देता है। तो ठंडे रहिए, रिलैक्स रहिए, आपको अपनी औकात नहीं भूलनी, तो आपको गुस्सा किस बात का? किसी ने खड़े से कहा कि तुम इतने ठंडे कैसे रखते हो, तो उसने कहा अपनी औकात ज़्यादा है कि मिट्टी का बना हुआ हूँ। तो एक मिट्टी के बने हुए इंसान को क्या लगे कि वो गुस्सा करे? ये काम ही बहुत बड़ा है जो अल्लाह ने एम्बिया कराम का काम, अगर कुछ उसमें हमारा कुछ हिस्सा डाल दिया तो हमारी इससे बड़ी कीमत और किसने देनी थी।
जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो हमने हासिल किया है, और आइंदा इंशाल्लाह आप यहाँ आए तो हमें स्पेशल टाइम देना ताकि हम लाइव हमारे ऑडियंस जो है आपसे फ़ोन पे बात करें, क्वेश्चन करें, और फिर हमारा एक राबता बने इंशाल्लाह ताला। और जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा आपका, और अल्लाह ताला आपको इस चीज़ की जज़ा दे और हमें वो बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।
जी आमीन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर।